पेज नंबर 22। हंस का नीर क्षीर विवेक महावीर प्रसाद द्विवेदी। संस्कृत साहित्य में हंस, पिक, भ्रमर और कमल की बड़ी धूम है। बिना इनके कवियों की कविता फीकी हो जाती है। कोई पुराण, कोई काव्य, कोई नाटक ऐसा नहीं जिसमें इनका जिक्र ना हो। सब में कवियों ने एक न एक विशेषता भी रखी है, यथा हंस मिले हुए दूध और पानी को अलग-अलग कर देता है, दूध पी लेता है और पानी छोड़ देता है। पिक अपने बच्चे कौवों के घोंसले में रख जाता है और बड़े होने तक उन्हीं से उनकी सेवा कराता है। भ्रमर आम की मंजरी से अतिशय प्रेम रखता है पर चंपे के पास तक नहीं जाता। कमल चंद्रमा से द्वेष रखता है, उसकी विद्यमानता में वह कभी नहीं खिलता, पर सूर्य का वह परम भक्त है। इनमें से दो एक बातें तो निसंदेह सही हैं, पर औरों के विषय में मतभेद है। उदाहरण के लिए हंस और उसके नीर क्षीर विषयक विवेक को ही लीजिए। संस्कृत काव्यों में जगह जगह पर यह लिखा हुआ है कि हंस में यह शक्ति है कि वह दूध और पानी अलग अलग कर देता है, पर दूध और पानी को अलग अलग करते उसे किसी ने नहीं देखा। शायद किसी ने देखा भी हो पर इस विषय का कोई लेख कहीं नहीं मिलता। यह प्रवाद सात समुंदर पार करके अमेरिका पहुंचा। वहां के विद्वानों को हंस का यह अद्भुत गुण सुनकर आश्चर्य हुआ, पर वे लोग ऐसी बातों को चुपचाप मान लेने वाले नहीं। इस देश में हंस विषयक यह प्रवाद हजारों वर्षों से सुना जाता है, पर इसके सत्यासत्य की जांच आज तक किसी ने नहीं की। यदि किसी ने की भी हो तो उसका फल कहीं लिपिबद्ध नहीं मिलता। अमेरिका में हार्वर्ड नाम का एक विश्वविद्यालय है, उसमें लॉन्गमैन साहब एक अध्यापक हैं। आपने हंस के इस अलौकिक गुण की परीक्षा का प्रण किया, इसलिए आपने कई हंस मंगाकर पाले और अनेक तरह से उनकी परीक्षा ली, पर नीर को क्षीर से अलग करने में उन्होंने हंस को असमर्थ पाया। तो हंस के नीर क्षीर विवेक विषयक वाक्यों की क्या संगति हो? इस विषय के दो चार वाक्य सुनिए। नीर क्षीर विवेके हंसालस्य त्वमेव तनुषे चेत् विश्वस्मिन् अधुनायः कुलव्रतं पालयिष्यति कः। भामिनी विलास। हे हंस, यदि क्षीर को नीर से अलग कर देने का विवेक तू ही शिथिल कर देगा तो फिर इस जगत में अपने कुलव्रत का पालन और कौन करेगा? वितीर्ण शिक्षा इव हरत पथस्थ सरस्वती वाहन राजहंस। ये क्षीर नीर प्रविभाग गदच्छा यश्विन्नश्चे कवयो जयन्ति। हृदय की स्थित सरस्वती के वाहन राजहंसों ने मानो जिनको शिक्षा दी है, ऐसे क्षीर नीर विभाग करने में दक्ष कविजनों की महिमा खूब जागरूक है। यो हनिष्यति वध्यम त्वाम रक्ष्यम रक्षति चा द्विजम हंसो हि क्षीरम आदत्ते तनिम तनिमिश्रा वर्जयत्यपः। हंस जिस तरह क्षीर ग्रहण कर लेता है और उसमें मिला हुआ पानी पड़ा रहने देता है, वैसे ही यह भी वध करने योग्य तुझे मारेगा और रक्षणी द्विज की रक्षा करेगा। प्राज्ञस्तु जलपतां पुंसाम श्रुत्वा वाचः शुभाशुभ गुण गुणवद् वाक्यमादत्ते हंस क्षीरमिव अम्भसः। लोगों के मुंह से भली बुरी बातें सुनकर बुद्धिमान आदमी अच्छी बातों को वैसे ही ग्रहण कर लेता है जैसे हंस जल में से दूध को ग्रहण कर लेता है। यजुर्वेद के तैतिरीय ब्राह्मण के दूसरे अध्याय में एक वाक्य है, उसका मतलब है जिस तरह क्रौंच पक्षी जल और दूध को अलग-अलग करके दूध का ही पान करता है, उसी तरह इंद्र भी जल से सोमरस को अलग करके उसका पान कर लेता है। इसकी टीका सायणाचार्य ने इस प्रकार की है। क्षीर पात्रे स्वमुखे प्रक्षिप्ते शति मुखगत शखी मुखगत रस संपर्क संपर्क अति क्षीरांशो जलांशोभय विवेच्यते। अर्थात जल मिश्रित दूध के बर्तन में हंस जब अपनी चोंच डालता है, तब मुखगत रस विशेष का योग होते ही जल और दूध अलग-अलग हो जाते हैं या अलग-अलग जान पड़ते हैं। इस पिछले अवतरण से यह सूचित होता है कि किसी किसी की राय में हंस के मुख में एक प्रकार का रस होता है। उस रस का मेल होने से पानी और दूध अलग-अलग हो जाते हैं। यदि इस रस में खट्टापन हो तो दूध का जमकर दही हो जाना संभव है, पर इसके लिए कुछ समय चाहिए। क्या हंस की चोंच के दूध के भीतर पहुंचते ही दूध जम जाता होगा? संभव है जम जाता हो, पर यह बात समझ में नहीं आती कि पात्र में भरे हुए जल मिश्रित दूध में से जल को अलग करके दूध को हंस किस तरह पी लेता है। अध्यापक लॉन्गमैन की परीक्षा से तो यह बात सिद्ध नहीं हुई। अमेरिका के एक और विद्वान ने हंस के नीरक्षीर विषयक प्रवाद का विचार किया है। आपका नाम है डॉक्टर कावंस, आप वाशिंगटन में रहते हैं। आपका मत है कि हंस के मुंह की बनावट ऐसी होती है कि जब वह कोई चीज खाता है तब उसका रसमय पतला अंश उसके मुंह से बाहर गिर पड़ता है और कड़ा अंश पेट में चला जाता है। आपके मत में दूध से मतलब इसी कड़े अंश से। बहुत रसीली चीज के कठोर अंश का बाहर बह आना संभव जरूर है, पर किसी चीज के कठोर अंश का अर्थ दूध कहना हास्यास्पद है। अच्छा, हंस रहते कहाँ हैं और खाते क्या हैं? अच्छा, हंस रहते कहाँ हैं और खाते क्या हैं? हंस बहुत करके इसी देश में पाए जाते हैं। उनका सबसे प्रिय निवास स्थान मानसरोवर है। यह सरोवर हिमालय पर्वत के ऊपर है। सुनते हैं, यह बहुत सुंदर है। इसका जल मोती के समान निर्मल है। यहीं हंस अधिकता से रहते हैं और यहीं वे अंडे देते हैं। जाड़ा आरंभ होते ही शीताधिक्य के कारण मानसरोवर छोड़ करके नीचे चले आते हैं, पर विंध्याचल के आगे वे नहीं बढ़ते। विंध्य और हिमालय के बीच ही में निर्मल जल राशि पूर्ण तालाबों और नदियों के किनारे वे रहते हैं। चैत वैशाख में वे हिमालय की तरफ चले जाते हैं। जिन जलाशयों में कमलों की अधिकता होती है, वे हंसों को अधिक प्रिय होते हैं। वहीं वे अधिक रहते हैं। उनके शरीर का रंग सफेद होता है और उनके पैर लाल होते हैं। चोंच का रंग भी लाल होता है। डील डॉल उनका बतख से कुछ बड़ा होता है। डील डॉल उनका बतख से कुछ बड़ा होता है। यदि हंस दूध पीते हैं तो दूध उनको मिलता कहाँ से है? मानसरोवर में उन्होंने गायें या भैंसे तो पाल नहीं रखी, और ना हिंदुस्तान ही के किसी तालाब या नदी में उनके दूध पीने की कोई संभावना है। इससे गाय भैंस का दूध पीना हंसों के लिए असंभव सा जान पड़ता है। कोई कोई कविजन कहते हैं हंस मोती चुगते हैं, पर मोती भी मानसरोवर में पैदा नहीं होते। यदि उसमें मोतियों का पैदा होना मान भी लिया जाए, तो हिंदुस्तान के तालाबों में जहाँ वे कुछ दिन रहते हैं, मोतियों का पैदा होना आज तक नहीं सुना गया। हाँ, एक बार कहीं हमने पढ़ा था कि पंजाब या राजपूताने की किसी झील में कुछ सुक्तियाँ ऐसी मिली थीं जिनमें मोती थे, पर क्या जितने हंस मानसरोवर छोड़कर नीचे आते हैं, वे सिर्फ उसी झील में जाकर रहते हैं और मोती चुगते हैं? वहाँ भी यदि मोती बिखरे हुए पड़े हों, तभी उन्हें हंसगण आसानी से चुगेंगे। यदि वे सुक्तियों के भीतर ही रहते हों, तो उनको फोड़कर मोती निकालना हंसों के लिए जरा कठिन काम होगा। पर इन संभावनाओं का कुछ अर्थ नहीं। निर्मल जल की उपमा मोती से दी जाती है, और मानसरोवर का जल अत्यंत निर्मल है। इससे उसके मोती सदृश निर्मल जल की उपमा मोती से देते लोगों ने जल को ही मोती मान लिया हो तो कोई आश्चर्य नहीं। अतएव कि हंसा मोती चुगए कि भूखे रह जाए, आदि में मोती चुगने से मतलब मोती के समान निर्मल जल पीने से जान पड़ता है। यह पीने की बात हुई। अब खाने की बात पर विचार कीजिए। नैषध चरित्र के पहले सर्ग में लिखा है कि राजा नल ने एक हंस पकड़ा। हंस आदमी की बोली बोलता है। उसने राजा से कहा, फलेन मूलेन चवारी भूरुहाम मुनेरि वेत्थम मम यस्य वृत्तयः, अर्थात पानी में पैदा होने वाले पौधों और बेलों के फलों और कंदों से मैं मुनियों के समान अपना जीवन निर्वाह करता हूँ। भामिनी विलास में जगन्नाथ राय ने हंस की एक अन्योक्ति कही है, भुक्ता मृणाल पटलो भवता निपीता नयम्बूनि यत्र नलिनानि निषेवितानि रिराज हंस वदतस्य सरोवरस्य कृतेन केन भविनाशी कृतोपकारः। हे राजहंस, जिसके आश्रय में रहकर तूने मृणाल डंडों को खाया, जलपान किया और नलिनों का स्वाद लिया, उस सरोवर का तू किस प्रकार प्रत्युपकार करेगा? मेघदूत में कालिदास कहते हैं, अकैलाशाद विषकिशल यच्छेद पाथेयवन्तः संपतन्ते नभसि भवतो राजहंसासहाय। अर्थात विष और किसलय रूपी पाथेय, रास्ते में खाने पीने की सामग्री लेने वाले राजहंस आकाश में कैलाश पर्वत से आप मेघ के साथी या सहायक होंगे। विक्रमोर्वशीय में भी कालिदास एक जगह कहते हैं, सुरांगना करसति खंडिता क्रात शूत्रम मृणालादिव राजहंस। अर्थात यह सुरांगना मेरा मन शरीर से उसी तरह खींच रही है जिस तरह राजहंसी मृणाल से सूत्र खींचती है। इन अवतरणों से प्रकट है कि हंस चाहे मोती चुगते हैं और दूध ही क्यों न हो, दूध पीते ही क्यों न हो, पर वे भी पानी पीते हैं और जल रूह पौधों के फल फूल मूल नाल मणाल और विष तंतु भी खाते हैं। हंसों को जल पूर्ण जलाशयों में रहना अधिक पसंद है। वहां उनके खाने की सामग्री विशेष करके मृणाल दंड, उनके भीतर के विष तंतु और उनसे निकलने वाला रस है। कमलनाल को तोड़ने से उसके भीतर से सफेद सफेद सूत सी एक चीज निकलती है, उसी को विष तंतु कहते हैं। सुनते हैं उसे हंस बहुत खाते हैं। मृणाल दंड की गांठों से एक तरह का रस भी निकलता है, वह पतले दूध की तरह होता है, उसमें कुछ मीठापन भी होता है। इस रस का नाम भी क्षीर है। पेड़ों से निकलने वाले पानी के सदृश सफेद रंग के प्राय सभी प्रवाही पदार्थों का नाम क्षीर है। यहाँ तक कि गूलर, बरगद, थूहड़ और मदार तक से निकलने वाली सफेद चीज को हम लोग दूध ही कहते हैं। मृणाल दंड पानी में रहते हैं, उन्हीं के भीतर से क्षीर तुल्य सफेद रस निकलता है, उसी रस को हंस पीते हैं या खाते हैं। अतएव इस तरह पानी के भीतर से निकाल कर हंसों का दूध पीना जरूर सिद्ध होता है। अनुमान होता है कि आरंभ में इसी प्रकार के नीरक्षीर के पृथकत्व से पंडितों का मतलब रहा होगा। धीरे धीरे लोग वह बात भूल गए। उनकी यह समझ हो गई कि मामूली जल मिश्रित दूध से हंस जल को पृथक कर देते हैं और जल को छोड़कर दूध भर पी जाते हैं।